ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के हम सभी ब्राह्मण बच्चे वरदानी बच्चे हैं। भगवान ने जन्मते ही हम सभी को वरदानों से ये जन्म दिया, वरदानों से ही हमारी पालना हो रही है और वरदानों से ही हमारे अंदर नई दुनिया में जाने के श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन हो रहा है। ऐसा वरदानी जीवन हो तो नेचुरल है, सिद्धि स्वरूप स्वाभाविक है। और अगर ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप न हो तो बाकी कौन दुनिया में होगा। तो इसीलिए हम सभी बच्चों को बाबा ने सिद्धि स्वरूप होने का वरदान दिया ही है। परंतु सिद्धि स्वरूप बनने के लिए विधि का जितना यथार्थ रीति से इस्तेमाल होता है तो सिद्धि स्वरूप स्वाभाविक हो जाएंगे। वैसे भी आज की दुनिया के अंदर कौन सफलता मूरत बनना नहीं चाहता है। हर कोई आत्मा यही जीवन का लक्ष्य रखते हैं कि मुझे सफल होना है। असफल कोई नहीं होना चाहता। सफलता माना ही सिद्धि स्वरूप होना। तो विधि के यथार्थ प्रयोग से सिद्धि का अनुभव करना सहज हो जाता है। दुनिया के अंदर अगर देखा जाए कि कोई भी बच्चा स्कूल में भी पढ़ाई में सक्सेसफुल होना चाहता है तो मेहनत करता है, अटेंशन रखता है, रोज पढ़ाई के ऊपर विशेष फोकस करता है और बार बार उस पढ़ाई को अपने अंदर आत्मसात करते हुए जब जीता है तो सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर बच्चा बुरी संगत में रहता है, खेल पाल में ही उसका दिमाग चलता है, पढ़ाई उसको अच्छी ही न लगे तो सफलता स्वरूप कैसे बनेगा। ठीक इसी तरह बाबा ने भी हम बच्चों को कहा, बच्चे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर भी सफलता मूरत बनना है तो जरूर है पढ़ाई पर अटेंशन देना है। और जो बाबा ज्ञान की बूंदे हमें दे रहा है उन ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके चलना है। विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने मुरली के अंदर कितनी सुंदर बात बताई, विधि से सिद्धि। सिद्धि है परफेक्ट बनना और विधि बताई तीन बातें। पहली तो बच्चे विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो। फिर दूसरी बात बताई धारणा करो, कभी किसी को दुख नहीं देना है, शांत स्वरूप स्थिति में रहना है, तो धारणा की बातें भी बताई। और तीसरा फिर बताया अभ्यास करो, अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो ये नहीं कि खाली चिंतन करना है, लेकिन चिंतन के साथ साथ धारण करना और धारण करने के साथ साथ अभ्यास करना, तब परफेक्शन को प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रतिदिन की मुरली के अंदर, सारी मुरली में आप अगर देखेंगे तो कितनी बातें बाबा विधि भी बताता है और उसकी फाइनल सिद्धि स्वरूप क्या है वह भी बताते हैं। चाहे वरदान ले लो, आज वरदान में भी कहा कि खुश नसीब भव, लेकिन खुश नसीब कौन बन सकता है जिसके झूले के दोनों रस्सी बराबर हो। कौन सी रस्सी बताई? याद और सेवा। ये रस्सी बराबर होनी चाहिए, तब आप खुश नसीब भव बन सकते हैं। तो प्रतिदिन की मुरली के अंदर, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वरदान हो, स्लोगन हो, या बीच की सारी मुरली हो, उस मुरली के अंदर बाबा अनेक प्रकार की बातें बताता है कि ये विधि है, ये सिद्धि है। कभी सिद्धि पहले बता देता है और उस सिद्धि को प्राप्त करने की ये विधि है, लेकिन उसके लिए इतना अटेंशन से हमें पढ़ाई पढ़नी पड़े तो क्लियर हो कि हाँ, ये विधि से ये सिद्धि स्वरूप और ये मुझे जरूर अचीव करना है कि नहीं। देखो शास्त्रों के अंदर भी कितनी सुंदर कथाएं दुनिया वालों ने भी बनाई है कि शिवजी का बेटा गणेश जी दिखाया विघ्न विनाशक, और उस गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और दो बच्चे शुभ और लाभ, है ना। वास्तव में तो देखा जाए तो ये ब्राह्मण जीवन है, हम सभी शिव बाबा के बच्चे हैं ही हैं, और गणेश जी माना इसका बड़ा दिमाग है, अर्थात ज्ञान की हर बात को यथार्थ रीति अप्लाई करना, और इसीलिए उसकी दो पत्नी दिखाई रिद्धि और सिद्धि, अर्थात यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। जब यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनेंगे तो विघ्न आएगा ही नहीं। विघ्न कब आता है जीवन के अंदर? विघ्न तभी आता है जब यथार्थ विधि का प्रयोग नहीं होता है, तो सिद्धि स्वरूप भी नहीं होते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कैरेक्टर के रूप में बताया कि शिवजी के बच्चे गणेश जी, हम सभी गणेश हैं, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया है यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा दी है, और जब यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करेंगे तो उसका फल क्या होगा? शुभ और लाभ, शुभ लाभ होगा, है ना। दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? शुभ लाभ ही तो चाहते हैं। अब शुभ लाभ प्राप्त करने की भी विधि है कि लाभ का उल्टा कर दो, लाभ का उल्टा करो तो भला, सबका भला करते चलो। जितना सबका भला करते चलेंगे तो शुभ लाभ मिलना ही है। लाभ तो भला, तो भला करो सबका। जो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी फीलिंग्स आप रखते चलो, तो शुभ लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर भला किया और लाभ न मिले ये हो नहीं सकता है। तो ये वास्तव में हम सभी बच्चों का गायन है। सारे शास्त्रों में भी ये विधि बताई है, लेकिन दुनिया के लोग भले कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना होगा वहां लिख देंगे शुभ लाभ, गणेश जी का आवाहन करेंगे निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, लेकिन उसके बाद यथार्थ विधि लेकर के जीवन में चलते नहीं। दुनिया के अंदर यथार्थ विधि कौन सी है? तो अच्छे कर्म करो। बाबा भी हम बच्चों को कहते जितने आपके अच्छे कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, ये यथार्थ विधि है। साथ ही साथ हमारी मनसा बहुत ऊंची होनी चाहिए, मनसा में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे हमारी प्यारी जानकी दादी हमेशा कहती थी, नियत साफ तो मुराद हासिल। इंटेंशंस बहुत स्वच्छ होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। जितने हमारे इंटेंशंस शुभ होंगे, नियत हमारी अच्छी होंगी, नियत में कभी खोट नहीं होंगी, तो हर मुराद हासिल यानी हर रूप से सफलता हमें प्राप्त होगी ही होगी। सिद्धि स्वरूप न बने ये हो ही नहीं सकता है। इंटेंशंस क्लीन हो और क्लियर हो। तो इसीलिए विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। अब कौन सी विधि से क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है? तो बाबा ने हम सभी बच्चों को हमेशा ये प्रेरणा दी है कि बच्चे संकल्प से सिद्धि, सिद्धि स्वरूप बनना है संकल्पों के आधार से। वृत्ति से वाइब्रेशन को परिवर्तन करना है, वायुमंडल को चेंज करना है, लेकिन उसकी विधि क्या है? तो चाहे हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो, हमारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ हो, हमारे संकल्प बहुत ऊंचे हो, लेकिन उसकी विधि बाबा ने जो इतनी सिंपल बताई हमें कि बच्चे हर समय प्रैक्टिस ये करो देही अभिमानी बनने की। एक एक चीज को ठीक करने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आप देही अभिमानी बनते जाएंगे तो आपके संकल्प में भी शुद्धि होगी, आपकी वृत्ति भी शुभ होने लगेगी और आपकी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और उसी से सिद्धि को अनुभव करेंगे। देही अभिमानी स्थिति ही आधार है, ये विधि है, उसका प्रैक्टिस करते रहना आवश्यक है। तो देही अभिमानी स्थिति से आप जब दृष्टि देंगे किसी को भी या दृष्टि से देखेंगे देही अभिमानी स्थिति में रह करके, तो दूसरे का देह दिखाई नहीं देगा। तो नेचुरल है आपकी आत्मिक वृत्ति हो जाएगी, आपकी रूहानी दृष्टि हो जाएगी और आपके संकल्पों में वो श्रेष्ठता स्वतः आ जाएंगी और आपके हर कर्म में सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। कितनी सरल विधि बाबा ने बताई। दूसरी विधि कौन सी बताई बाबा ने? कि बच्चों रहना भी गृहस्थ में है, छोड़ना भी नहीं है, वहीं रह करके सबके बीच में रह करके कैसे चलना है, कमल फूल समान रह करके जीना है ब्राह्मण जीवन में, तो रहना भी उसी संसार में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, लेकिन कमल फूल समान बनने के लिए विधि बाबा ने बताई, बच्चे बैलेंस से चलो। बैलेंस से चलेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगी, सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बाबा की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, सिद्धि क्या होगी, ब्लिसफुल लाइफ। तो बैलेंस ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ, इसमें तीन दोनों चीजें हैं, विधि भी है तो सिद्धि भी है। तो व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना है ये बाबा ने सिखाया, है ना। और व्यवहारिक जीवन में, सबके बीच में, पारिवारिक जीवन में रहने के लिए अगर बैलेंस से चलेंगे तो कभी भी आप असफल हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाने के लिए अगर मान लो कि कोई बात में समझ में नहीं आ रहा हो कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो व्यवहारिक जीवन के अंदर बैलेंस से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उसका मीटर है श्रीमत। श्रीमत को यूज करके देख लो कि श्रीमत क्या कहती है, इस हालत में श्रीमत क्या कहती है। बाबा ने हर बात की श्रीमत दी है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर बात की श्रीमत दी है। तो अपने आप हमें जवाब मिलता जाएगा, और जैसे ही जवाब मिलता जाएगा आप बैलेंस से अपने आप चलते जाएंगे। जहां इम्बैलेंस हुआ वहां पर सफलता स्वरूप नहीं होंगे। तो इसीलिए बैलेंस पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उसका पता चलता है श्रीमत। श्रीमत को लेकर के चलो, ठीक है ना। लेकिन अगर श्रीमत में मनमत मिक्स कर दिया, परमत मिक्स कर दिया कि थोड़ा तो चलता है, अब कोई चीज इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो, पावरफुल हो, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेटेड चीज में आप पानी मिलाते जाओ या और चीज मिलाते जाओ तो डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसका पावर तो खत्म हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह श्रीमत इतनी पावरफुल चीज है कि श्रीमत पर चलने के बाद सिद्धि न मिले ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर उसमें मनमत मिक्स किया, डाइल्यूट किया, परमत मिक्स करके डाइल्यूट किया, अगर उसमें रावण की मत को भी मिला करके डाइल्यूट किया तो श्रीमत का पावर तो खत्म हो गया, तो वो सिद्धि कहां से दिलाएगा। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में बैलेंस से चलना है, और बैलेंस से चलते जाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। बैंक बैलेंस यानी फूल का नहीं बोल रही हूं, फूल का बैंक बैलेंस नहीं बोल रही हूं, लेकिन जो बैलेंस से चलता है उसका पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो पुण्य का बैलेंस बढ़ाने की बात है, जो साथ चलने वाला है वो बढ़ाने की बात है। यहां का बैंक बैलेंस क्या करेंगे, वो तो यहीं खत्म हो जाना है। इसीलिए कहा बैलेंस से चलो तो पुण्य का बैलेंस भी बढ़ता जाएगा, ब्लेसिंग्स भी मिलती जाएंगी, और रिजल्ट क्या होंगी, सिद्धि क्या होंगी, ब्लिसफुल लाइफ, सदा मौज में जिएंगे, सब सदा आनंद में जिएंगे। और यही तो हमारे जीवन का मकसद है। सन्यासी लोगों ने सब कुछ छोड़ा किस लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, खुशी का अनुभव करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अनुभव नहीं कर पाए क्योंकि बैलेंस से नहीं चले, एक तरफी हो गए। तो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे बैलेंस से चलो, और जितना बैलेंस से चलेंगे आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो खुशी होगी या नहीं होगी, हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे अपने आप। तो ये है आपकी विधि डबल लाइट होकर के चलने की, और देखो मौज का अनुभव करते रहेंगे, यह सिद्धि स्वरूप। तो पहली बात देही अभिमानी स्थिति, दूसरी बात व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए क्या करना है, बैलेंस से चलना है, और बैलेंस से चल रहे नहीं चल रहे हैं, तीसरी बात श्रीमत मीटर है ना। तो श्रीमत को लेकर के चलो, श्रीमत आपको असफल करे ये हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा है गारंटी दी है कि बच्चे आप अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगा कि मुझे नुकसान हुआ, वैसे तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हुआ कि कुछ नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेवार बाबा है। बाबा उस नुकसान को भी ठीक करने की ताकत रख देता है, है ना? तो जिम्मेवार बाबा है। लेकिन हाँ, अगर मन मत पर मत रावण की मत उसमें मिक्स करते जाएंगे, फिर तो बाबा जिम्मेवार नहीं रहेगा। एक्यूरेट श्रीमत जो है, जैसी है, उसको वैसे ही समझ करके चलना, उस पर वो हमें पावरफुल बनाएंगे। ठीक है, चौथी बात, विद्धि से सिद्धि स्वरूप बनने की। तो बाबा ने हम बच्चों को हर बात में सिद्धि स्वरूप बनने के लिए एक धारणा बताई है, बच्चे निमित्त भाव रखो। इसलिए हमारी बड़ी दादी का स्लोगन था, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। जब सफलता स्वरूप सिद्धि स्वरूप होना है तो विधि ये तीन है। निमित्त बन करके रहो। निमित्त बनना माना मैं का भाव समाप्त करना। मैंने ये किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। और बाबा ने निमित्त बनाया, ये भाव जितना जागृत रहेगा उतना निर्माणता हमेशा बनी रहेगी। और निर्माणता होगी तो उसकी वाणी कैसी होगी? निर्मल वाणी होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, विधि है। अगर वाणी में निर्मलता है, फिर प्रैक्टिकल कर्म में निर्माणता है, माना निमित्त भाव है, और निमित्त भाव है तो सिद्धि स्वरूप बनना स्वाभाविक है। आज आप देखो प्रैक्टिकल हमारी प्रकाशमणि दादी और दादी जानकी, दोनों महिलाएं ऐसी थी, एक ने विदेश का कारोबार संभाला, इतने देशों में फैलावा कर दिया, और दादी ने भारत का इतना फैलावा कर दिया, 5000 सेंटर भारत के हो गए। दोनों दादियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, डिग्रियां नहीं थी, है ना? लेकिन फिर भी दुनिया ने डिग्री उनके चरणों में लाकर डॉक्टरेट की डिग्री देना चालू कर दिया। भाई तुम भले नहीं पढ़े हो, नहीं है डिग्रियां, लेकिन हम आपको डिग्री देते हैं, है ना? सभी दादियों को डिग्री अर्पण कर दिया। क्यों? निमित्त भाव। कहीं पर भी मैंने किया, मैं करूं रही हूं, अभिमान नाम की चीज नहीं है। आज दुनिया के अंदर क्या है? अभिमान ही अभिमान है। और अभिमान जहां है तो नेचुरल है कि अभिमान जहां होगा वहां अपमान भी होगा, और अपमान होगा तो गुस्से में भी आ जाएंगे, क्रोध भी आएगा। लेकिन हमारी दादियों को कभी क्रोध करते देखा? कभी नहीं देखा। निमित्त भाव, मैंपन को इतना समाप्त कर दिया था, इतना गला दिया था। चाहे सारी दादियां जब थी, दादियों का जो फोटो मिलता है देखने को कि इतनी दादियां थी, झुंड में थी, लेकिन कभी उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इंसान है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर एक की सोच अपनी अपनी, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर था। कभी कोई बात में हो भी जाए, लेकिन सॉल्यूशन एक ही था, और वो था श्रीमत बाबा, है ना? वो था श्रीमत और बाबा। तो जहां मैपन समाप्त, बाबा आ गया, श्रीमत ये कहती है, तो सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समाप्त होकर के एकता सहज बन जाती थी। आज दुनिया के अंदर देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद, उस स्थापक के जाने के बाद कितनी फूट पड़ जाती है, कितने उसमें मत मतांतर हो जाते हैं। बाबा के जाने के बाद दादियों में इतनी यूनिटी से, आज 87 साल हो गए फिर भी उतनी ही यूनिटी से चलते रहे। क्यों क्यों संस्थापक के जाने के बाद भी दादियों में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी आपस में मतभेद में आकर के तनातनी हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि उनका मैंपन ही नहीं था, मैं कह रही हूं यही नहीं था। बाबा कराने वाला करा रहा है, बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा जो कराएगा सही कराएगा। सभी दादियों के मुख से एक ही बात, अरे जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और दादी दीदी निमित्त बने, तो दादी दीदी निमित्त बने लेकिन उनके लिए कहा यह जाता था यज्ञ के अंदर, दो शरीर आत्मा एक, दो शरीर आत्मा एक। जो दादी ने कहा वही दीदी ने कहा, जो दीदी ने कहा वही दादी ने कहा। कई बार कई लोग ब्राह्मणों में कई हुशियार तो होते हैं ना, तो कई लोग दादी के पास जाते थे या पहले दीदी के पास जाते थे, दीदी ये बात है, और दीदी ने अपना श्रीमत के आधार पर जो राय देनी थी वो दे दिया, और वो उनको पसंद नहीं आई तो सोचते थे अच्छा दादी के पास जाते हैं, दादी को मना लेते हैं। तो दादी के पास जाते थे, दादी भी वही जवाब देती थी, जबकि फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं होता था दोनों के बीच में, लेकिन जो दीदी ने कहा होता था वही दादी भी कहती थी। माना दादी को मना ही नहीं सकते थे, और मनाने जाते थे तो दादी श्रीमत को ले आती थी, बाबा ये कहता है, बाबा ने ऐसे चलाया है हमको, बाबा ऐसा कहता है। तो अपने आप, इसीलिए यज्ञ के अंदर ये कहा जाता था कि दो शरीर आत्मा एक, जो इसने सोचा वही उसने भी सोचा। इतनी मेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग, अब सोचो, नहीं तो दीदी माता थी, दादी कन्या थी, है ना। दीदी तो एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, दादी तो फिर भी 10th क्लास तक गई थी, पढ़ाई किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग होती थी, तो कैसे। तो यही कि निमित भाव, निर्माणता और निर्मल वाणी। कभी दादी दीदी को भी गुस्सा करते नहीं देखा यज्ञ में, जो पालना किया। और इतने यज्ञ वत्सों को ब्रह्मा बाबा के हर आचरण पर चलाया, खाली ब्रह्मचर्य पर चलाया नहीं। सन्यासी लोग खाली अपने शिष्य को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी गृहस्थ में रहने वालों को किसी को दिया हो तो बताओ, कोई नहीं दे सकता है। और यहाँ लाखों परिवार ब्रह्माचारी बना दिया ये दादियों ने, बाबा ने। बाबा की जो शिक्षा थी वो बाबा ने ये दादियों के अंदर इतना कूट कूट के भरा था कि दादियों ने अपने जीवन और अपने क्लासेस के माध्यम से या जिस भी तरह की पालना दे करके लाखों परिवार को ब्रह्माचारी बना दिया। निमित्त बाबा ने बनाया, करण करावनहार बाबा था, लेकिन इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता कि भगवान चला रहा है, भगवान कार्य करा रहा है, और नई सृष्टि की स्थापना का कार्य इसी के आधार पर करा रहा है। तो ये यथार्थ विधि से सत धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना, और ये प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप होंगे, ये प्रैक्टिकल देवता बन करके दिखाएंगे, यही तो भगवान की सबसे बड़ी कमाल है। तो विधि से सिद्धि स्वरूप, हमारे ब्राह्मण जीवन में चारों सब्जेक्ट जो है वो चारों सब्जेक्ट में अगर संपूर्णता प्राप्त करनी हो तो भी यथार्थ विधि से चलो। ज्ञान की सब्जेक्ट को अगर उसमें सिद्धि स्वरूप यानी ज्ञानी तू आत्मा बन करके चलना है तो ज्ञान की एक एक पॉइंट को यथार्थ रीति अप्लाई करते चलो तो ज्ञानी तू आत्मा बन जाएंगे। और बाबा को कौन पसंद है? ज्ञानी तू आत्मा ही पसंद है ना? योगी तू आत्मा पसंद है। योग के लिए यथार्थ विधि क्या बताई? योग में सिद्धि स्वरूप होने की यथार्थ विधि बाबा ने बताई, देह सहित देह के सर्व संबंध, पुरानी दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह है यथार्थ विधि, यह है यथार्थ विधि। और जो उस विधि से चले उसका बुद्धि योग भटक नहीं सकता है। अगर ये शिकायत है मेरा योग नहीं लगता है, माना विधि में गड़बड़ है कि देह सहित, पहले अपने देह को ही नहीं भूल रहे हैं, आत्मा समझो ना। तो विधि बाबा ने बताई है, देह सहित देह के सर्व संबंध, देह की पुरानी दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। यही विधि है, उसके सिवाय और कोई विधि नहीं। आप खुद को देह समझते रहेंगे, देहधारियों को याद करते रहेंगे, देह की दुनिया के आकर्षण में चलते रहेंगे और फिर कहो कि मेरा तो योगी नहीं लगता है, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा बताओ? तो योग की यथार्थ विधि यह है। अच्छा, धारणा की यथार्थ विधि पवित्रता है। सबसे बड़ी पावरफुल धारणा बाबा ने यही करा दिया। और जहां पवित्रता है सुख शांति, उसके बच्चे हैं। दादी हमेशा कहती थी, पवित्रता के दो बच्चे सुख शांति। जीवन के अंदर सुख शांति आ जाती है और सुख शांति जहां है वहां और गुण भी आ जाएंगे, धारणा करना सहज हो जाएगा, है ना? तो एक एक चीज की यथार्थ विधि बताई हुई है। और सेवा की यथार्थ विधि है निर्माणता। एक ने कहा, दूसरे ने माना, इसका नाम है ज्ञानी। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना निश्चय बुद्धि विजयंती, जितना दृढ़ संकल्प के साथ चलो, विजयी होगी ही होगी। हिम्मत से बच्चे, मदद ए बाप, ये सारी विधि है। और सिद्धि उसकी क्या है? बाबा इसीलिए कई बार कहते कि बच्चे आधा स्लोगन याद रखते हैं, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, मदद करो, मदद करो, लेकिन बाबा के विधि अनुसार हिम्मत ए बच्चे, मदद ए बाप अपने आप मिलेगी। तो हिम्मत का कदम उठाना नहीं है और बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, ये चलता रहेगा। अब हिम्मत का कदम उठाएंगे नहीं तो बाबा मदद कैसे करेंगे? पहला कदम तो हमें उठाना है ना। जब हम पहला कदम उठाएंगे तो हजार भुजा वाला सामने खड़ा होकर के हजार कदम मदद करने के लिए तैयार है। ये भगवान की गारंटी है। लेकिन पहला कदम तो हम उठाएं, वो पहला कदम उठा नहीं रहे हैं। बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा कैसे मदद करेगा? एक कदम उठाओ फिर हजार भुजा वाला मददगार है ही है। ये हो नहीं सकता है कि मददगार भगवान की मदद न अनुभव हो, ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सेवा में भी हिम्मत का कदम तो उठा। अरे दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, फलाने क्या कहेंगे। मुझे याद आता है कि जब पहली बार यज्ञ से विदेश सेवा के लिए जब पांच भाई बहने गए थे, पांच भाई बहने, उसमें डॉक्टर निर्मला दीदी, रमेश भाई, उषा बहन और एक बहन और एक भाई थे, ऐसे पांच लोग गए थे, जगदीश भाई और एक बहन थी। तो पांच लोग जब गए, हाँ शीलेंद्रा दादी गई थी साथ में, तो ये पांच लोग गए थे, रमेश भाई, जगदीश भाई, उषा बहन, निर्मला दीदी और शीलेंद्रा दादी। तो जब पहली बार गए तो बाबा से छुट्टी लिया स्टेज पर कि बाबा इस तरह से विदेश सेवा के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि भले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कहीं पर भी सेवा के लिए जाओ, बाबा को याद करके घर से निकलना, बाबा को याद करके घर से निकलना और सेवा पर जाना। तो ये लोग जब अमेरिका की सेवा पर पहले पहले गए, तो फिर वहां पर कोई फ्लैट लिया और फ्लैट में रहने लगे। तो जैसे बाबा ने कहा था वैसे जो है बाबा को याद करके निकलते थे। अब एक दिन कोई काम के कारण जल्दी जल्दी करो, जल्दी पहुंचना पड़ेगा, अभी टाइम हो गया है, जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी तैयार होकर के निकल करके बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए तो मना फ्लैट में थे ऊपर, तो नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो देखा कि चाबी रह गई या चाबी छूट गई, फिर ऊपर गए चाबी लेने के लिए, फिर नीचे आए तो देखा अरे कागज ही भूल गए, फिर ऊपर गए, फिर दूसरा कुछ हुआ, तीसरा तो कहा भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो लेट हो रहे हैं और फिर एक एक चीज भूल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उतने में बाबा ने शिलेंद्रा दादी की रस्सी खींची, ऊपर गई बाबा के पास, तो बाबा को कहा बाबा एक एक चीज भूलते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और एक तो जल्दी जाना है, लेट हो गया है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने ये श्रीमत दी थी कि बाबा के कमरे में 2 मिनट बैठ करके बाबा को साथ ले करके जाना तो सफलता मिलेगी सेवा में। तो बाबा के कमरे में बैठे थे तो याद आया, फिर सारे के सारे ऊपर गए, बाबा के कमरे में बैठे फिर निकले। तो कहने का भाव आज भी बाबा के ये महावाक्य खाली उन पहले ग्रुप दादियों के लिए था ऐसे नहीं, लेकिन आज भी हम कहीं भी सेवा के लिए निकलते हैं, आप देखेंगे कि अगर बाबा के कमरे में 2 मिनट भी आप बैठो, खड़े रहो चाहे तो, और बाबा को कहो बाबा चलो अभी आप साथ में, तो बाबा को साथ लेकर के जब चलते हैं तो सेवा में सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ जहाँ जल्दी 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 करो और फिर बाबा के कमरे में भी खड़े नहीं रहे, बाबा के कमरे में बैठे भी नहीं 2 मिनट बिना बाबा को लिए गए, तो सफलता मिलती है नहीं मिलती, वो काम होता ही नहीं है, वो काम होता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा को लेकर चलो ना, जब बाबा को लेकर के चलेंगे, बाबा को याद करेंगे तो जरूर है सफलता न मिले ये हो ही नहीं सकती है। तो हमारे चारों सब्जेक्ट का सफलता प्राप्त करने की हर एक सब्जेक्ट की विधि बाबा ने जरूर बताई है, परंतु जी धीरे धीरे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाता है ना, तो रिद्धि सिद्धि का भी क्या होता है, संचार होता है। और इसीलिए आज की दुनिया के हिसाब से कई लोग सोचते हैं कि भाई सफलता प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति बीच में अड़चन डाल रहा है, इसको हटाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जादू मंत्र तंत्र ये सब कराना शुरू करते हैं। अब ये सब कराने से क्या मिलेगा, टेम्पररी अगर कोई सफलता मिल भी जाए लेकिन उसकी कर्मों की गुह्य गति को समझा है। जो भी व्यक्ति अशुद्ध विधि को अपनाता है, एक है शुद्ध विधि जो बाबा ने बताई है जिससे सफलता स्वरूप बनना है, लेकिन आज की दुनिया में जिसने ज्ञान को यथार्थ रीति हजम नहीं किया है और हजम न करने के कारण अशुद्ध विधियों को अपनाते हैं, तो अशुद्ध विधि से कभी सफलता प्राप्त हो ऐसा हो सकता है, हो सकता है? अशुद्ध विधि से कभी सफलता नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। इसीलिए कभी भी ये सोचना भी मत, क्योंकि अशुद्ध विधि को अपनाने के कारण उस समय तो टेम्पररी आपको कोई बात में सफलता जरूर मिल भी जाए, लेकिन कर्मों की गुह्य गति के अनुसार आप ऐसे कर्म के बंधन में बंध जाते हैं जो अनेक जन्मों का घाटा कर देंगे आप उस टेम्पररी छोटी सी सफलता प्राप्त करने के लिए, अनेक जन्मों का घाटा सारा मैं तो कहती हूँ सारे कल्प में उस आत्मा की श्रेष्ठ गति कभी नहीं हो सकती है। सारे कल्प में श्रेष्ठ गति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अशुद्ध विधि को अपनाने के पहले 10 बार सोचना, तभी तो बाबा कहते हैं कभी कभी त्रिकालदर्शी बन करके तीनों कालों के पट्टे पर खड़े हो करके आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से सोच करके समझ करके फिर आप कोई भी विधि अपनाना। अगर तीनों कालों को सोचा नहीं है आपने और अशुद्ध विधि का प्रयोग किया, तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयोग किया, तो उसे क्या होगा? इस जन्म में थोड़ा बहुत अगर मिल भी गया, लेकिन जन्मों जन्मों का घाटा, अनेक जन्म कभी श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती है। ऐसी अगर जीवन मिले तो क्या पाया, क्या पाया और क्या खोया? कि कितना भी भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी वो कर्म का बंधन आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी दुनिया के लोगों की तरह अशुद्ध विधि का प्रयोग कभी नहीं करना, ये आपको अनेक जन्मों के लिए बांध लेता है। जैसे दुनिया में ये कहा जाता है कि जो ये तांत्रिक विद्या को अपनाता है तो तांत्रिक विद्या को अपनाने वाले कोई ना कोई आत्मा को वशीभूत करते हैं और वशीभूत करके उनके द्वारा वो कार्य सिद्ध कराते हैं। अब जो आत्मा को वश किया उस आत्मा को तो गति प्राप्त करने नहीं दे रहे ना। अब जिसने वश किया वो जब शरीर छोड़ेगा तो उसको और कोई वश कर लेगा, उसकी गति नहीं हो सकती है, उस आत्मा की कभी गति नहीं हो सकती है। वो हमेशा किसी न किसी के अधीन होकर के ही उसको रहना पड़ेगा और कभी उसको शरीर नहीं मिलेगा, भटकती रहेगी और भटकने के साथ साथ कोई कोई उसको तांत्रिक रूप से वश कर लेगा और उससे अशुद्ध कार्य कराने के निमित्त बनेगा, और अशुद्ध कार्य जितना कराएंगे तो उसके जिम्मेवार या वो कर्म का बंधन कितना जबरदस्त होगा तो सोचो तो सही। कोई भी जन्म उसका गति ही ना हो श्रेष्ठ ऐसा प्राप्त हो तो क्या जरूरत है मुझे किसी के लिए कोई अशुद्ध विधि अपनाने की। अरे आप, बाबा ने इतने शुद्ध विधि बता करके इतना वरदानी बना दिया आपको, फिर अशुद्ध विधियों का प्रयोग करने का कोई जरूरत है क्या हमें? कभी नहीं करना, कभी श्रेष्ठ गति नहीं होंगी, कभी वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है, वो कभी किसी न किसी के पराधीन रहेगी और पराधीन हो करके उसकी कभी गति नहीं हो सकती है। इसलिए सावधान सावधान, क्योंकि कभी कभी कोई ब्राह्मण भी लालच में आकर के इस विधि को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए जो ऐसे तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता है, कोई जन्मों में सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि वो बाबा की ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं करता है, बाबा के वरदानों को जीवन में अनुभव नहीं कर सकते है। सुना, इसीलिए कभी भी ये सोचना भी मत कि हम अशुद्ध विधि का प्रयोग करें। अरे ज्ञान मिला है, भाग्यवान है, तभी भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो आपको ज्ञान का जीवन के अंदर प्रस्फुटित हुआ है, वो ज्ञान का बीज आपके सामने आया है, और उसके बाद भी आप भगवान की श्रीमत के बजाय रावण की अशुद्ध मत को लेकर के चलेंगे, उस पर चलेंगे तो क्या गति होगी बताओ। क्या गति होगी? तो क्यों अपना सत्यानाश करने के लिए? लेकिन कई लोग क्या सोचते, किसने देखा, अभी तो कर लो। लेकिन ये कर्मों की गुह्य गति बाबा ने समझाई हुई है, तीनों कालों को अच्छी तरह से समझाया हुआ है, इसलिए ऐसी विधि में कभी भी नहीं जाना, ये अंडरलाइन कर लेना। अशुद्ध विधियों को हमें अपनाना नहीं है, ठीक है? यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करो, और यथार्थ विधि से जो सिद्धि को प्राप्त करता वो भगवान के भी प्रिय है, वो भगवान के भी नैनों में समाये हुए, भगवान के दिल तख्त पर बैठे हुए रहेंगे। अगर कुछ इस जन्म में कमी भी रही तो भी कोई बात नहीं, बाबा के नैनों में समाये हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी हालत में माया के प्रभाव में आकर के अशुद्ध विधियों को नहीं अपनाना, ठीक है? ठीक है, अच्छा। ओम शांति।
स्वप्न में भी